नमस्ते साथियों, आप सुन रहे हैं बहराइच मोबाइल वाणी से अपना श्रीवास्तव को। लड़कियों की शिक्षा से सामाजिक क्रांति। जी हां, हिजाब, घूंघट, दहेज, तीन तलाक और दुष्कर्म की घटनाओं के बीच सबसे बड़ी अच्छी खबर यह है कि लड़कियां अब शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं और अपने आप पे डिपेंड हो रही हैं। मैं बता दूं, हाल ही का एक खबर के अनुसार अगर दक्षिण भारत में ITI में लड़कियों की संख्या पिछले 5 साल में 19% से बढ़कर 26% को पार कर गई है। यह किसी सामाजिक क्रांति से कम नहीं है। कुछ साल पहले तक लड़कियों को विशेषकर लड़कों के मुकाबले कमजोर मानकर गणित के बजाय होम साइंस पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था। आज स्थिति बदल रही है। लड़कियां विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी अपना दमखम साबित कर रही हैं और कई बार तो लड़कों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं। कहा जाता है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर उन्हें मौका दिया जाए और सही समय पर कदम उठाए जाए तो वो परिणाम का सामना कर सकती हैं। अगर 2014 तक ITI में लड़कियों की प्रतिशत सिर्फ और सिर्फ 14% थी, 2018 में यह बढ़कर 17% हो गई, अब यह 20% है। नतीजन, जहां 2017 में ITI में लड़कियों की संख्या 995 थी, वहीं मौजूदा समय में लड़कियों की संख्या 3411 हो गई है। तो लड़कियां कितना जागरूक हो चुकी हैं, कहां से कहां पहुंच गई हैं। आने वाले वर्षों में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। इसमें यह भी तस्करी मुंबई समेत दक्षिण के राज्यों में ज्यादा बेहतर है। दूसरे सामाजिक अध्ययन भी बताते हैं कि दक्षिण के राज्यों की प्रगति में महिलाओं की शिक्षा का विशेष योगदान रहता है। यही बात उन अन्य देशों की प्रगति बताती है जहां महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। क्या जाति के विभाजनकारी और अवैज्ञानिक विमर्श के बीच सामाजिक बराबरी और सौहार्द के लिए यह कदम ज्यादा सार्थक नहीं है? 21वीं सदी के भारत में सिर्फ जाति के भरोसे विकास और सच्ची बराबरी संभव है? आज देश में लड़कियों की शिक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। हाल में चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे भी अनेक महिला वैज्ञानिकों का योगदान रहा है। युवा वैज्ञानिक पुरस्कार पाने वालों में महिलाओं की संख्या लगातार भी बढ़ रही है। पिछले 100 वर्ष तक महिला वैज्ञानिकों में सिर्फ एक विदेशी मैडम क्यूरी का ही नाम इस देश में लोग जानते हैं, लेकिन अब विज्ञान के कई क्षेत्रों में भारत की महिलाएं भी अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC की सिविल सेवा परीक्षाओं के परिणाम में तो पूरा देश जनता जानता है। वर्ष 2022 की परीक्षा में पहले 5 में 4 लड़कियां थीं। उससे पिछले 4 वर्षों में भी लगातार लड़कियां ही टॉप करती रही हैं। हर वर्ष सिविल सेवा परीक्षा में लड़कियों की सफलता लड़कों के मुकाबले कई गुना अधिक रहती है। ज्यादातर राज्यों की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम हो या CBSE का रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट हो, जहां पे लड़कियों की सफलता भविष्य के प्रति उम्मीद जगती है। जो रक्षा सेवाएं दशकों तक महिलाओं के लिए बंद रही, उनके दरवाजे भी अब खुल गए हैं। लगभग 10,000 महिला अधिकारी इस समय देश की तीनों सेनाओं में काम कर रही हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। बावजूद इसके उनके साथ भेदभाव की भी खबर नहीं आती रहती है। देश के कई हिस्सों में आज भी लड़कियों के साथ भेदभाव होता है। जहां लड़कों को कोचिंग में पढ़ने के लिए देश के दूसरे शहरों में अच्छा पैसा खर्च करके भेजते हैं, वहीं बेटियों को कॉलेज तक भी मुश्किल से ही भेजते हैं। कानून व्यवस्था और सामाजिक कारण भी इसके लिए उतने ही जिम्मेदार हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर समाज को उन्हें बराबरी का अधिकार देना होगा। लगभग 10 साल पहले उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद सबसे बुरा असर लड़कियों की शिक्षा पर पड़ा था और दोनों समुदायों में लड़कियों को कॉलेज या स्कूल जाने में भेजना रोक दिया गया था। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बेटे तो इंजीनियर और आईएसएस बने, लेकिन उनकी बेटियों को नहीं पढ़ाया गया और उम्र से पहले ही शादी कर दी गई। यह तस्वीर तो तुरंत बदलना होगा, हमें यह चीज नहीं मंजूर है। मौजूदा केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए संसद में 33% आरक्षण का प्रावधान इस दिशा में एक बहुत बड़ा सकारात्मक कदम है। ऐसे राजनीतिक कदम का संदेश दूर तक जाता है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज और नगर निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, उसके बहुत अच्छे परिणाम आए। फिर भी भारत के लोकतंत्र में महिलाओं को वह स्थान नहीं मिला जिसकी वे हकदार हैं। महात्मा गांधी ने 1925 में जब सरोजनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामित किया था, तब महिलाओं की ऐसी बराबरी की बात यूरोप, अमेरिका और चीन में भी नहीं होती थी। अभी भी राजनीति में जो महिलाएं सक्रिय हैं, वे ज्यादातर राजनीति घरानों से संबंध रखती हैं। महिला शिक्षा के जरिए इस वंशवादी लोकतंत्र में भी बदलाव संभव होगा, लेकिन महिलाओं की सच्ची बराबरी के लिए अभी भी बहुत प्रयास करने होंगे। मौजूदा लोकसभा में भी महिलाओं का प्रतिशत मात्र 14 है, जो दुनिया में लोकतंत्र के पैमाने पर बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। यूरोप, अमेरिका और कई देशों में संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 50% से भी ज्यादा है। दुनिया के किसी भी देश को मानवीय आधुनिकता के संदर्भ में महिलाओं की बराबरी के पैमाने से ही आंका जा सकता है। इस मामले में जहां यूरोप, अमेरिका दुनिया भर में अव्वल है, जो भी देश हैं, महिलाओं की स्थिति बहुत निराशाजनक है। सरकार के स्तर पर महिला उत्थान के जो कदम उठाए जा रहे हैं, उसमें पूरे समाज को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी, तभी महिलाओं की स्थिति पूरी तरह सुधर सकती और उन्हें अपना सही जगह मिल सकता है। धन्यवाद।